अध्ययन लेख तीन। इस लेख का अध्ययन 15 से 21 मार्च के दौरान किया जाएगा। विषय, बड़ी भीड़ यहोवा और यीशु की तारीफ करती है। ये लेख प्रकाशित वाक्य 7:10 पर आधारित है, जहां लिखा है, हम अपने उद्धार के लिए अपने परमेश्वर का जो राजगद्दी पर बैठा है और मेमने का एहसान मानते हैं।
गीत 14,
धरती के नए राजा की तारीफ करें।
लेख की एक झलक।
27 मार्च 2021 यहोवा के साक्षियों के लिए एक बहुत ही खास दिन है। उस शाम मसीह की मौत का स्मारक मनाया जाएगा।
हाजिर होने वाले ज्यादातर लोग उस समूह में से होंगे जिसे यीशु ने दूसरी भेड़े कहा।
सन 1935 में यहोवा के साक्षियों को इस समूह के बारे में कौन सी नई समझ मिली? महासंकट के बाद दूसरी भेड़ के लोगों को क्या क्या आशीषें मिलेंगी?
जब वो स्मारक में हाजिर होते हैं तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे यहोवा और यीशु की तारीफ हो? पैराग्राफ एक। सवाल, सन 1935 में दिए एक ऐतिहासिक भाषण से एक जवान भाई को क्या एहसास हुआ?
बहुत समय पहले एक परिवार था। माता पिता बाइबल विद्यार्थी थे।
फुटनोट, उस वक्त यहोवा के साक्षी बाइबल विद्यार्थी के नाम से जाने जाते थे। फुटनोट समाप्त।
उनके तीन बेटे और दो बेटियां थीं, जिन्हें उन्होंने बचपन से यहोवा की सेवा करना और यीशु की तरह बनना सिखाया था। सन 1926 में उनके एक बेटे ने 18 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। बाकी सभी बाइबल विद्यार्थियों की तरह ये जवान भाई भी हर साल स्मारक के दिन रोटी और दाग मदिरा लेता था। फिर 1935 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक अधिवेशन हुआ। उसमें भाई जे एफ रदरफोर्ड ने एक भाषण दिया जिसका विषय था बड़ी भीड़। उस ऐतिहासिक भाषण से जवान भाई को एहसास हुआ कि उसकी आशा स्वर्ग जाने की नहीं है। उस अधिवेशन में बाइबल विद्यार्थियों को क्या पता चला? पैराग्राफ दो। सवाल, भाई रदरफोर्ड ने अपने भाषण में क्या समझाया? भाई रदरफोर्ड ने अपने भाषण में समझाया कि प्रकाशित वाक्य 7:9 में बताई बड़ी भीड़ कौन होंगे। बाइबल विद्यार्थी पहले ये सोचते थे कि बड़ी भीड़ के लोग भी स्वर्ग जाएंगे, लेकिन उनमें अभिषिक्त मसीहियों के मुकाबले कम विश्वास होगा। भाई रदरफोर्ड ने आयतों से समझाया कि बड़ी भीड़ के लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, बल्कि महासंकट से जिंदा बचकर धरती पर हमेशा के लिए जिएंगे। इन लोगों के बारे में यीशु ने कहा, मेरी दूसरी भेड़े भी हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना है।
वो मेरी आवाज सुनेंगी और तब एक झुंड और एक चरवाहा होगा।
यूहन्ना 10:16। मसीह की ये दूसरी भेड़े यहोवा के वफादार हैं और इन्हें फिरदौस में हमेशा जीने की आशा है।
फुटनोट,
इसका क्या मतलब है? दूसरी भेड़े वो लोग हैं जो मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं और धरती पर हमेशा जीने की आशा रखते हैं। जिन लोगों ने इन आखिरी दिनों में यहोवा की उपासना करना शुरू किया है, उन्हें भी इस समूह में गिना जाता है। जब मसीह महासंकट के दौरान पूरी मानव जाति का न्याय करने आएगा, तो दूसरी भेड़ों में से जो लोग उस वक्त जीवित रहेंगे और महासंकट से बच निकलेंगे, उस समूह को बड़ी भीड़ कहा जाता है।
फुटनोट समाप्त।
इस नई समझ का उस जवान भाई और दूसरे साक्षियों पर क्या असर हुआ, आइए देखें। मिली नई समझ, बदली हजारों जिंदगियां। पैराग्राफ 3 और 4। सवाल, सन 1935 के अधिवेशन में हजारों भाई बहनों को क्या बात समझ आई? अधिवेशन में भाई रदरफोर्ड ने अपने भाषण के आखिर में हाजिर लोगों से पूछा, आप में से जो लोग पृथ्वी पर अनंत जीवन पाने की आशा रखते हैं, क्या वो सभी कृपया खड़े होंगे? उस अधिवेशन में आए एक भाई ने बताया कि वहां 20,000 लोग हाजिर थे और उनमें से आधे से ज्यादा लोग खड़े हो गए। वो नजारा देखकर भाई रदरफोर्ड ने ऐलान किया,
देखो बड़ी भीड़ यही है।
ये सुनकर लोग खुशियां मनाने लगे। जो लोग खड़े हुए वो समझ गए कि यहोवा ने उन्हें स्वर्ग में जीने के लिए नहीं चुना है और ना ही पवित्र शक्ति से उनका अभिषेक हुआ है। अधिवेशन के अगले दिन 840 लोगों ने बपतिस्मा लिया और उनमें से ज्यादातर लोग दूसरी भेड़ों में से थे। उस भाषण के बाद से उस जवान भाई ने और हजारों भाई बहनों ने स्मारक के वक्त रोटी और दाक मदिरा लेना बंद कर दिया। एक भाई ने कहा, मैंने आखिरी बार रोटी और दाक मदिरा 1935 में स्मारक के वक्त ली। मुझे एहसास हो गया कि यहोवा ने मुझे स्वर्ग का बुलावा नहीं दिया और पवित्र शक्ति से मेरा अभिषेक नहीं हुआ है। मेरी आशा धरती पर जीने की है और मैं इस धरती को फिरदौस बनाने में हाथ बटाऊंगा। उस वक्त कई भाई बहनों ने इस भाई की तरह ही महसूस किया। तब से बड़ी भीड़ के लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है और वो बचे हुए अभिषेक मसीहों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
फुटनोट,
इसका क्या मतलब है?
बचे हुए अभिषेक मसीही वो लोग हैं जो अभी धरती पर जिंदा हैं और स्मारक के दौरान रोटी और दाक मदिरा लेते हैं।
फुटनोट समाप्त। पैराग्राफ 5। सवाल, जिन्होंने रोटी और दाक मदिरा लेना बंद कर दिया है उनके बारे में यहोवा कैसा महसूस करता है? तो जैसा कि हमने देखा, 1935 से पहले कुछ भाई बहन सोचते थे कि उन्हें स्वर्ग का बुलावा मिला है और इसलिए वो रोटी और दाक मदिरा लेते थे, मगर जब उन्हें एहसास हुआ कि वो अभिषेक नहीं हैं, तो उन्होंने लेना बंद कर दिया। ऐसे भाई बहनों के बारे में यहोवा ने कैसा महसूस किया होगा? यहोवा ने उन्हें जरूर स्वीकार किया होगा। आज भी कुछ भाई बहन ये सोचकर रोटी और दाक मदिरा लेते हैं कि वो अभिषेक हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें स्वर का बुलावा नहीं मिला है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर वो नम्रता से अपनी गलती मान लें, स्मारक में रोटी और दाक मदिरा लेना बंद कर दें और यहोवा की सेवा करते रहें, तो यहोवा उन्हें जरूर स्वीकार करेगा और दूसरी भेड़ों में गिनेगा। कुछ भाई बहनों ने ऐसा ही किया है। हालांकि अब वो रोटी और दाक मदिरा नहीं लेते, फिर भी वो स्मारक में जरूर आते हैं क्योंकि वो यहोवा और यीशु का एहसान मानते हैं। एक लाजवाब आशा। पैराग्राफ 6। सवाल, यीशु ने स्वर्गदूतों से क्या करने के लिए कहा है? महासंकट बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए अच्छा होगा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में अभिषेक मसीहों और बड़ी भीड़ के बारे में जो बताया गया है उस पर चर्चा करें। उस अध्याय में लिखा है कि यीशु ने स्वर्गदूतों को विनाशकारी हवाओं को थामे रखने को कहा। उन्हें इन हवाओं को तब तक रोककर रखना था जब तक सभी अभिषेक मसीहों पर आखिरी मोहर नहीं लगाई जाती, यानी उन्हें यहोवा से मंजूरी नहीं मिल जाती।
इसके बाद यीशु के भाइयों को स्वर्ग में राजा और याजक बनने का इनाम दिया जाएगा।
जब 144,000 अभिषेक मसीही स्वर्ग में अपना इनाम पाएंगे, तो यहोवा, यीशु और स्वर्गदूतों को बहुत खुशी होगी। पैराग्राफ 7। सवाल, जैसा प्रकाशित वाक्य 7 के 9 और 10 में बताया गया है, यूहन्ना ने अपने दर्शन में किसे देखा और वो लोग क्या कर रहे हैं? यूहन्ना सबसे पहले 144,000 राजाओं और याजकों का जिक्र करता है। इसके बाद वो एक बड़ी भीड़ देखता है। ये भीड़ हर्मागिदोन से बचकर निकली है। ये भीड़ इतनी बड़ी है कि कोई इसे गिन नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य 7 के 9 और 10 में लिखा है, इसके बाद देखो मैंने क्या देखा, सब राष्ट्रों और गोत्रों और जातियों और भाषाओं में से निकली एक बड़ी भीड़, जिसे कोई आदमी गिन नहीं सकता, राजगद्दी के सामने और उस मेमने के सामने सफेद चोगे पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए खड़ी है। और ये भीड़ जोरदार आवाज में बार बार पुकार कर कहती है, हम अपने उद्धार के लिए अपने परमेश्वर का जो राजगद्दी पर बैठा है और मेमने का एहसान मानते हैं। बड़ी भीड़ के लोग सफेद चोगे पहने हैं, यानी उन्होंने खुद को शैतान की दुनिया से बेदाग रखा है और वो परमेश्वर और मसीह के वफादार हैं। वो जोरदार आवाज में कहते हैं कि यहोवा और परमेश्वर के मेमने यीशु ने जो किया है उससे उनका उद्धार हुआ है। वो अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए खड़े हैं, जिससे पता चलता है कि वो खुशी खुशी यीशु को अपना राजा मानते हैं।
पैराग्राफ 7 से संबंधित तस्वीर के बारे में, बड़ी भीड़ के लोग सफेद चोगे पहने हैं और वो हाथ में खजूर की डालियां लिए यहोवा के शानदार सिंहासन और मेमने के सामने खड़े हैं। पैराग्राफ 8, सवाल, प्रकाशित वाक्य 7 के 11 और 12 के मुताबिक बड़ी भीड़ को देखकर स्वर्ग में क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 7 के 11 और 12 में लिखा है, सारे स्वर्गदूत जो उस राजगद्दी और प्राचीनों और 4 जीवित प्राणियों के चारों तरफ खड़े थे, राजगद्दी के सामने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की उपासना करने लगे और कहने लगे, आमीन, हमारे परमेश्वर की सदा तारीफ, धन्यवाद और महिमा होती रहे, और बुद्धि, आदर, शक्ति और ताकत सदा उसी के हों, आमीन। बड़ी भीड़ को देखकर स्वर्ग में क्या होता है? दर्शन में यूहन्ना देखता है कि स्वर्ग में सब खुशी के मारे यहोवा की तारीफ कर रहे हैं। भविष्य में ये सच में होगा। बड़ी भीड़ के लोग महासंकट से जिंदा बच निकलेंगे और उन्हें देखकर स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएंगी।
पैराग्राफ 9, सवाल, प्रकाशित वाक्य 7 के 13 से 15 के हिसाब से बड़ी भीड़ के लोग आज क्या कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 7 के 13 से 15 में लिखा है, ये देखकर एक प्राचीन ने मुझसे कहा, ये जो सफेद चोगे पहने हुए हैं ये कौन हैं और कहां से आए हैं? तब मैंने फौरन उससे कहा, मेरे प्रभु, तू ही जानता है कि ये कौन हैं।
और उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महासंकट से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने चोगे मेमने के खून में धोकर सफेद किए हैं।
इसी वजह से ये परमेश्वर की राजगद्दी के सामने हैं और ये दिन रात उसके मंदिर में उसकी पवित्र सेवा करते हैं, और राजगद्दी पर बैठा परमेश्वर इन पर अपना तंबू तानेगा। यूहन्ना बताता है कि बड़ी भीड़ के लोगों ने अपने चोगे मेमने के खून में धोकर सफेद किए हैं। इसका मतलब है कि उनका जमीर साफ है और यहोवा उनसे खुश है। उन्होंने अपना जीवन यहोवा को समर्पित किया है, बपतिस्मा लिया और यीशु के बलिदान पर विश्वास किया है। उनका यहोवा के साथ एक अच्छा रिश्ता भी है। इस तरह वो धरती पर दिन रात यहोवा की पवित्र सेवा करते रहने के योग्य बने हैं। वो पूरे जोश के साथ चेला बनाने का काम कर रहे हैं और परमेश्वर के राज को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।
पैराग्राफ 10, सवाल क, बड़ी भीड़ को किस बात का यकीन है? सवाल ख, वो किस वादे को पूरा होते देखेगी? बड़ी भीड़ को पूरा यकीन है कि महासंकट से बचने के बाद भी यहोवा उनकी देखभाल करता रहेगा, क्योंकि राजगद्दी पर बैठा परमेश्वर उन पर अपना तंबू तानेगा। वो उस वादे को पूरा होते देखेंगे जिसका उन्हें बहुत समय से इंतजार था। परमेश्वर उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और ना मौत रहेगी, ना मातम, ना रोना बिलखना, ना ही दर्द रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4, पैराग्राफ 10 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, बड़ी भीड़ के लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि वो महासंकट से बच निकले हैं। पैराग्राफ 11 और 12, सवाल क, प्रकाशित वाक्य 7 के 16 और 17 के मुताबिक बड़ी भीड़ को भविष्य में क्या आशीषें मिलेंगी? सवाल ख, स्मारक में हाजिर होकर दूसरी भीड़ें क्या कर सकती हैं और वो ऐसा क्यों करती हैं? प्रकाशित वाक्य 7 के 16 और 17 में लिखा है, ये फिर कभी भूखे प्यासे ना रहेंगे और ना इन पर सूरज की तपती धूप पड़ेगी, ना झुलसाती गर्मी, क्योंकि वो मेमना जो राजगद्दी के पास है इन्हें चरवाहे की तरह जीवन के पानी के सोतों तक ले जाएगा
और परमेश्वर इनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा।
आज कुछ देशों में आर्थिक मंदी या युद्ध और दंगों की वजह से परमेश्वर के लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता। कुछ और भाई बहनों को अपने विश्वास की वजह से जेल में डाला जा रहा है, लेकिन बड़ी भीड़ जानती है कि बहुत जल्द इस दुष्ट दुनिया का अंत होगा। तब उन्हें भरपूर मात्रा में खाना मिलेगा और वो सब मिलेगा जिसे यहोवा के साथ उनका रिश्ता मजबूत हो। जब यहोवा शैतान की दुनिया का नाश करेगा
तो इस बात का ध्यान रखेगा
कि बड़ी भीड़ उसके क्रोध की झुलसाती गर्मी से बच जाए। महासंकट से बचने वालों को यीशु पानी के उन सोतों के पास ले जाएगा जो हमेशा की जिंदगी देंगे। जरा सोचकर देखिए, बड़ी भीड़ के आगे कितनी लाजवाब आशा है, उन्हें कभी मरना नहीं पड़ेगा।
इस बढ़िया आशा के लिए दूसरी भीड़ें यहोवा और यीशु का एहसान मानती हैं, हालांकि उन्हें स्वर्ग में जीने के लिए नहीं चुना गया, फिर भी यहोवा की नजरों में उनका मोल कम नहीं है। अभिषिक्त मसीहों की तरह वो भी यहोवा और मसीह की तारीफ कर सकती हैं। ऐसा करने का एक तरीका है यीशु की मौत के स्मारक में हाजिर होना।
स्मारक में दिल से यहोवा और यीशु की तारीफ कीजिए। पैराग्राफ 13 और 14। सवाल, हमें मसीह की मौत के स्मारक में क्यों हाजिर होना चाहिए? कुछ सालों से देखा गया है कि 1000 लोगों में से मुश्किल से एक व्यक्ति स्मारक के दौरान रोटी और दाख मदिरा लेता है। यानी ज्यादातर मंडलियों में ऐसा कोई नहीं है जो स्मारक के दिन रोटी और दाख मदिरा लेता हो। इसका मतलब है कि अधिकतर लोग धरती पर जीने की आशा रखते हैं। तो फिर वो स्मारक में क्यों आते हैं? जरा सोचकर देखिए, आप अपने दोस्त की शादी में क्यों जाते हैं? इसलिए कि आप इस नए जोड़े की खुशी में शामिल होना चाहते हैं और उनके लिए अपना प्यार जताना चाहते हैं। उसी तरह दूसरी भेड़ के लोग स्मारक में इसलिए हाजिर होते हैं क्योंकि वो यीशु और अभिषिक्त मसीहों की खुशी में शामिल होना चाहते हैं और उनके लिए अपना प्यार जताना चाहते हैं।
स्मारक में हाजिर होकर वो यीशु के बलिदान के लिए भी अपनी कदर जाहिर करते हैं। इस बलिदान की वजह से ही उन्हें धरती पर हमेशा जीने की आशा मिली है। दूसरी भेड़ के लोग एक और वजह से स्मारक में हाजिर होते हैं। यीशु ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दी है और वो उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं। जब यीशु ने पहली बार स्मारक की शुरुआत की तो उसने अपने वफादार प्रेषितों से कहा, मेरी याद में ऐसा ही किया करना। पहला कुरुन्थियों 11:23-26। दूसरी भेड़ के लोग तब तक यीशु की मौत का स्मारक बनाएंगे
जब तक अभिषिक्त मसीही धरती पर जिंदा हैं
और वो स्मारक में दूसरे लोगों को भी बुलाते हैं। पैराग्राफ 15। सवाल, स्मारक में हम क्या कर सकते हैं जिससे यहोवा और यीशु की तारीफ हो?
स्मारक में जब हम गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर और मसीह की तारीफ करने का मौका मिलता है।
इस साल के भाषण का विषय है, यहोवा और यीशु ने आपके लिए जो किया है उसकी कदर कीजिए। ये भाषण सुनकर यहोवा और यीशु के लिए हमारी कदर और बढ़ेगी।
जब रोटी और दाख मदिरा फिराए जाएंगी तो हम इस बात पर मनन कर पाएंगे कि ये यीशु के शरीर और खून की निशानी है।
हम इस बारे में भी सोच पाएंगे कि यहोवा हमसे कितना प्यार करता है, इसलिए उसने हमारे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। जो कोई यहोवा और उसके बेटे से प्यार करता है वो स्मारक में जरूर आएगा।
पैराग्राफ 13-15 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, स्मारक में रोटी और दाख मदिरा इस बात की निशानी है कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। अपनी आशा के लिए यहोवा का धन्यवाद कीजिए। पैराग्राफ 16। सवाल, अभिषिक्त मसीहों और दूसरी भेड़ों में क्या समानताएं हैं?
भले ही अभिषिक्त मसीहों की आशा और दूसरी भेड़ों की आशा अलग है, फिर भी यहोवा की नजर में दोनों अनमोल हैं। यहोवा ने दोनों समूहों के लिए अपने प्यारे बेटे की फिरौती दी। अभिषिक्त मसीही और दूसरी भेड़ें दोनों से उम्मीद की जाती है कि वो यहोवा और यीशु के वफादार रहें। याद रखिए, यहोवा हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से पवित्र शक्ति देता है। फिर चाहे वो स्वर्ग में जीने की आशा रखता हो या धरती पर। पैराग्राफ 17। सवाल, धरती पर आज जो अभिषेक मसीही जिंदा है वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभिषेक मसीही जन्म से ही स्वर्ग में जीने की आशा नहीं रखते, ये आशा उन्हें परमेश्वर देता है। वो अपनी आशा के बारे में गहराई से सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग में इनाम पाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो ठीक ठीक नहीं जानते कि स्वर्ग में उन्हें जो शरीर मिलेगा वो कैसा होगा, फिर भी वो यहोवा, यीशु, स्वर्गदूतों और बाकी अभिषेक मसीहों से मिलने के लिए बेताब हैं। उन्हें उस वक्त का इंतजार है जब वो यीशु और अपने अभिषेक भाइयों के साथ मिलकर स्वर्ग में राज करेंगे। पैराग्राफ 18। सवाल, दूसरी भेड़ के लोग किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? दूसरी भेड़ के लोग धरती पर हमेशा जीने की आशा रखते हैं, क्योंकि इंसानों में हमेशा जीने की इच्छा शुरू से होती है। वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो पूरी धरती को फिरदौस बना देंगे। उस वक्त वो खुद अपने घर बनाएंगे और बगीचे लगाएंगे। वो और उनके बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे। फिरदौस में वो बहुत कुछ कर पाएंगे। वो पहाड़ों, जंगलों और गहरे समंदर का मजा ले पाएंगे और यहोवा ने जो कुछ बनाया है उसे सीख पाएंगे। सबसे बढ़कर यहोवा के साथ उनका रिश्ता और गहरा हो जाएगा। पैराग्राफ 19। सवाल का, स्मारक के दिन हम सबको क्या मौका मिलेगा? सवाल ख, इस साल स्मारक कब होगा? यहोवा ने अपने हर समर्पित सेवक को एक बेहतरीन आशा दी है। हम सबको हमेशा की जिंदगी देने के लिए यहोवा और यीशु ने बहुत कुछ किया है। स्मारक के दिन हमें उनकी तारीफ करने का बढ़िया मौका मिलेगा। स्मारक साल में होने वाली सबसे खास सभा है। इस बार ये सभा शनिवार 27 मार्च 2021 को सूरज ढलने के बाद होगी। ज्यादातर लोग बिना रोक टोक इस सभा में आ पाएंगे, पर कुछ लोगों को विरोध का सामना करना पड़ेगा और कुछ लोगों को इसे जेल में मनाना पड़ेगा। याद रखिए, स्वर्ग में यहोवा, यीशु, स्वर्गदूत और अभिषेक मसीही हर व्यक्ति, समूह और मंडली पर ध्यान देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये स्मारक अच्छे से मना पाएंगे। कुछ और जानकारी, जब स्मारक शनिवार को पड़ता है जैसा 2021 को होगा, तो उस हफ्ते शनिवार या रविवार को मंडली की कोई सभा नहीं होगी, इसलिए अगले हफ्ते के लिए कोई अध्ययन लेख नहीं दिया गया है। वापस लेख पर, आपका जवाब क्या होगा? सन 1935 में बड़ी भीड़ के बारे में कौन सी नई समझ मिली? महासंकट के बाद बड़ी भीड़ को क्या आशीषें मिलेंगी? स्मारक के वक्त हम क्या कर सकते हैं जिससे यहोवा और यीशु की तारीफ हो? गीत 150। अपने बचाव के लिए यहोवा की खोज करें। लेख समाप्त।